ओम शांति। राजयोग के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं की पहचान, आत्मा का परिचय, या दूसरे शब्द में कहे तो खुद का खुद से परिचय, ये आत्मा का ज्ञान जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है। कई बार कई लोग यही सोचते हैं कि आखिर भी आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता क्या है, और नहीं होगा तो जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या उससे कोई प्राप्ति होने वाली है। जो ये आध्यात्मिक ज्ञान को हम जीवन में सुने, प्रैक्टिकली अप्लाई करें, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन के अंदर। महाभारत की बात मुझे याद आती है कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जो अनेकों युद्ध में अकेले हाथ जीते थे, परंतु जब वो महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, नर्वस हो गया, दिल शिकस्त हो गया, हिम्मतहीन हो गया कि बार बार भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर उसको भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था, परंतु जब ऐसी मनस्थिति उसकी हो गई, उस समय भगवान ने उसको सर्वप्रथम ज्ञान कौन सा दिया? दूसरे अध्याय में ही आत्मा का परिचय दिया। चौथे अध्याय में भगवान ने खुद का परिचय दिया। छठे अध्याय में ध्यान योग सिखाया, राजयोग सिखाया, और धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में एक परिवर्तन आने लगा, मोटिवेट होने लगा, और पूरा आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो गया। भावार्थ ये कि जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर जाते हैं, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास हो जाता, नर्वस हो जाता, डिप्रेस्ड हो जाता, हिम्मतहीन हो जाता है। ऐसे समय के लिए ही ये आत्मा का ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। जीवन के मनस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए वही राजयोग, योग शब्द जब सुनते हैं तो मनुष्य के मन में यही भाव आता है कि योग माना एक्सरसाइज करनी है, योग माना आसन लगाने हैं। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन नहीं सिखाए, एक्सरसाइजेस नहीं सिखाई। इसका मतलब योग का एक और भाव भी है और वो है एक आध्यात्मिक भाव। योग माना ही जोड़, जैसे वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन, संबंध जुड़ना। मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर है। जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाए तो यही कहेंगे समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। हमारा संबंध मनुष्य से भी है और जब किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते इसका सहयोग था। योग निरंतर चलता है जीवन में। जब तक एक बच्चे का योग पढ़ाई से नहीं तब तक वो पढ़ने में सफल नहीं हो सकता है। जब तक एक व्यक्ति अपने कार्य से जुड़ता नहीं है, कार्य से उसका योग नहीं, तब तक वो कार्य में सफलता नहीं है। इसी तरह किसी के जीवन में कई बार इष्ट देव की कृपा हो जाती तो यही कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। कल हमने देखा पहले सत्र के अंदर कि जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध जुड़ा और इसलिए ये भी देखा कि शरीर की वास्तविकता 5 तत्व है जिसके बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता है। आत्मा की वास्तविकता 7 गुण है, यही उसकी रियल आइडेंटिटी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। महान आत्माओं ने हमेशा यही मनुष्य को कहा, शांति बाहर नहीं अंदर है। लेकिन अंदर कहाँ है? सुख बाहर नहीं अंदर है, लेकिन अंदर कहाँ? यही तो हमारी रियल आइडेंटिटी है। इसलिए कहते हैं कि आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ी क्राइसिस है तो वह है आइडेंटिटी क्राइसिस। व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूला हुआ है या उससे बहुत दूर हो गया है और इसीलिए जीवन में इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि जब अपनी शक्ति को, क्षमता को ही न जाने तो उसको बाहर कैसे ले आए। तभी कईयों ने कहा कि एक व्यक्ति अपनी क्षमता के सिर्फ 5% शक्ति को यूज करता है। एक जीनियस अगर है तो 15% अपनी शक्ति को यूज करता है जीवन में, बाकी 85% उसकी शक्ति भी डॉर्मेंट रहती है, unused, untapped. उसको बाहर लाया ही नहीं गया है. वो कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था. इतना गरीब था, कर्जा ले लेकर के अपने परिवार को पालता था. एक समय आया जब सबने कर्जा देने के लिए भी मना कर दिया. बड़ा उदास हो गया, सोचा इसे तो मर जाऊं. उसके पास एक जमीन का टुकड़ा था, लेकिन बंजर जमीन थी, कुछ निकलता नहीं था. जैसे ही उसको मरने के विचार आ रहे थे कि इसे तो जीवन को खत्म कर दूं, वहां उसने देखा कि कुछ लोग उसके तरफ आ रहे हैं. वो लोगों ने आकर पूछा कि भाई ये जमीन किसकी है. उसने कहा मेरी जमीन है. तब उन्होंने कहा कि हमारे रिसर्च से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है. अगर तुम हमें ड्रिलिंग करने की परमिशन दो, उसका भाड़ा हम दे देंगे आपको. वो व्यक्ति ने कहा भले आप ड्रिलिंग करो, वैसे भी बंजर जमीन है, कम से कम मुझे भाड़ा तो मिले. उन लोगों ने ड्रिलिंग किया तो पता चला सचमुच उसके नीचे इतना तेल था कि प्रतिदिन 80,000 बैरल तेल निकल सकता है. बड़े खुश हो गए, एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है. उस व्यक्ति को कहा ये जमीन का टुकड़ा तुम हमें बेच दो, उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे. जब उसके हाथ में लाखों रुपया आया, वो सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था और मरने का विचार आ रहा था, क्योंकि मुझे यही पता नहीं था कि जिस धरनी पर मैं खड़ा हूं उसके नीचे इतना रिसोर्स है. ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी अथाह रिसोर्स है, अथाह शक्ति है, क्षमता है, लेकिन पता ही नहीं है. इसलिए जीवन में आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है. बार बार भगवान के मंदिर में जाकर के भी यही गाता है, हे प्रभु शांति नहीं है, सुख नहीं है. शांति की गरीबी, सुख की गरीबी, आनंद की गरीबी, प्रेम की गरीबी, ये एहसास, क्योंकि यही पता नहीं कि हमारे भीतर है वो. बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारा एक गुण धर्म है, हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है. पानी का गुण धर्म है शीतलता. पानी को कितना भी उबालो, उबाल उबाल कर रख दो, पुनः अपने गुण धर्म में आ जाएगा, शीतल स्वरूप में आ जाएगा. इसी तरह आत्मा का गुण धर्म ही शांति है, प्रेम है, आनंद है. बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भीतर है. इसलिए बाहर कहां से मिलेगा. लेकिन वो ड्रिलिंग करना नहीं आता है. जो ड्रिलिंग करे तो अंदर से वो बाहर निकाल सके अपने जीवन में. वैसे कोशिश हमने किया कि ये 7 गुणों से अपनी बैटरी को चार्ज कर ले, क्योंकि ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड है. डिस्चार्ज है उसका प्रमाण कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, स्ट्रेस्ड हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं होता है, मूड ऑफ हो जाता है, या कई प्रकार के भय उत्पन्न होने लगते हैं, एंग्जाइटी आती है जीवन में, ये सारे लक्षण है कि बैटरी डिस्चार्ज्ड है। चार्ज करने के प्रयत्न हमने किए, कौन से प्रयत्न किए? मनुष्य ने अपने जीवन के अंदर सबसे पहला तरीका जो चार्ज करने के लिए अपनाया वो था दूसरों से अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, संबंधों में अपेक्षा रखिए। लेकिन मिला नहीं? मिला क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी तो मैंने अपेक्षा रखी उससे, लेकिन उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे कर सकती है, बताओ? और इसलिए जब संबंधों में नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन आने लगा, क्लैशेस उत्पन्न हो, कहने में भी व्यक्ति ने कह दिया, और कोई चीज थोड़ी मांगी हमने उससे, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, गलत है क्या? थोड़ा सा सुख ही तो चाहा, गलत है क्या? मनुष्य से अपेक्षा रखने लगे, जब है ही नहीं तो क्या देगा? लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ? क्या कमी थी उसको? प्रेम की कमी। और प्यार उसी व्यक्ति से अपेक्षा रखती थी जो खुद प्यार कहीं और से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। कहां से मिलेगा उसको? उसी में जीवन का अंत हो गया। यही होता है, उस व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं जो खुद कहीं और से ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए संबंधों में मिलता नहीं, क्योंकि संसार का यूनिवर्सल लॉ या स्पिरिचुअल लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट। हम जो देंगे वही तो मिलेगा। अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना होगा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे शांति देनी होगी, खुशी चाहिए खुशी देनी होगी। दे नहीं सकते हैं तो मिलेगा कहां से? देने में नफरत है, देने में गालियां हैं, स्ट्रेस है, तो वही तो वापस आएगा। इसीलिए कहा संबंधों में अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ। तो दूसरा तरीका अपनाया, कौन सा? कर्म करो। कर्म करने से मिल जाएगा, इसलिए विभिन्न कर्म किए। मनुष्य आज धन कमाता है, किस लिए? धन चाहिए जीवन में, किस लिए चाहिए? सोचते हैं कि धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए चाहिए ना? करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई, क्या कहेगा? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है, क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ गया, सुख शांति नहीं आई। कई लोग समाज सेवा करते हैं, سوشل سروس. پوچھو سوشل سروس کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آنند ملتا ہے اسی لیے، خوشی ملتی ہے سیوا کرنے کے بعد. پوچھو خوشی ملی تو کیا کہیں گے؟ ارے اتنی پالیٹکس ہے، خوشی کہاں؟ سوشل سروس میں بھی اتنی پالیٹکس ہو گئی ہے تو نہ خوشی ہے نہ آنند ہے. دھیرے دھیرے وڈرا کرنے لگتے ہیں. کئی لوگ شادیوں پر جاتے، پارٹیز میں جاتے ہیں. پوچھو شادیوں پر کیوں جاتے ہو، پارٹیز میں کیوں جاتے ہیں؟ کہتے سماج میں رہتے ہیں تو سب کے ساتھ ہمارا سنیہ بھرا سمبندھ ہونا چاہیے، اسی لیے جانا پڑتا ہے. پوچھو سنیہ بھرا سمبندھ ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ ارے ایک کو خوش کیا دو ناراض ہو گئے، بگڑتا ہی جا رہا ہے، بنتا کہاں ہے؟ کئی لوگ گنگا اشنان کرنے جاتے، پوچھو گنگا اشنان کیوں کرتے ہیں؟ کہتے آنند آتم شدھی ہوتی ہے اسی لیے. پوچھو آتم شدھی ہو گئی؟ ارے ایسی آتم شدھی ہو جاتی تھی پھر تو سارے کرمینل کو لے جا کر کے گنگا اشنان کرا دینا چاہیے. اتنی سہج ودھی اگر ہے تو جیل بنانے کی ضرورت ہے کیا؟ کئی لوگ ستسنگوں میں جاتے ہیں، پوچھو ستسنگ میں کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں گیان پراپتی کے لیے. پوچھو گیان ملا؟ ارے ستسنگ سننے کے بعد گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے یہ گیان، یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے. میرا ایک کاریکرم تھا احمدآباد میں، کاریکرم کو تھوڑی دیر تھی، لوگ آ رہے تھے، ہم بیٹھے تھے سینٹر پر ہی. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، لینڈ لائن. میں سوابھاوک ریتی سے وہیں بیٹھی تھی، میں نے فون اٹھایا، سامنے سے ایک بچے کی آواز تھی. وہ بچے نے پوچھا یہ اوم شانتی ہے؟ میں نے کہا اوم شانتی ہے. پوچھنے لگا دیدی آج وہاں کوئی پروگرام ہے؟ میں نے کہا پروگرام ہے. وہ بچہ کہنے لگا دیدی میرے ممی پپا وہاں آئے ہوں گے. میں نے کہا بلانا ہے؟ کہا نہیں بلانا نہیں ہے، آپ ان کو سمجھانا کہ گھر میں شانتی سے کیسے رہنا ہوتا ہے، بہت جھگڑا کرتے ہیں، ہمیں بہت ٹینشن ہو جاتا ہے، یہ آج کی حالت ہے. ایک سمے تھا جب ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ بچے بہت جھگڑا کرتے ہیں، ان کو شانت کیسے کیا جائے. آج وہ سمے آ گیا کہ بچے کمپلین کرتے ہیں، ماں باپ بہت جھگڑا کرتے، ان کو شانت کیسے کیا جائے. بھاوارتھ یہ وبھن کرم کیے لیکن کہیں سے بھی بیٹری چارج نہیں ہوئی. تب تیسرا طریقہ اپنایا، کون سا؟ بھگوان کو یاد کرو، پرارتھنا کرو. ہم نے اپنی پرارتھنا میں یہی سات باتیں تو مانگی ہے. اجیان سے ہمیں گیان کی اور لے چلو ہے پربھو. دوسرا کہا میلی چادر اوڑ کے آیا رے دوار تیرے پربھو، تو صاف کر دینا، شدھ کر دینا. بھگوان بھی پوچھتا ہے کب تک، یہ کانٹریکٹ کب تک کا سائن کیا ہوا ہے کہ تم میلے ہوتے رہو اور میں صاف کرتا رہوں. تیسرا کہا تو پیار کا ساگر ہے، تیری ایک بوند کے پیاسے ہم، ایک بوند بھی مل جائیں گی تو بہت ہے جیون جینے کے لیے. چوتھا کہا ہم کو من کی شانتی دینا پربھو، تو دکھ ہرتا سکھ کرتا ہے سکھ دینا، تو سچیدانند سوروپ ہے آنند دو. اور انت میں کہا اتنی شکتی دینا ہمیں داتا جو وشواس کبھی کم نہ ہو. यानी अगर भगवान ने शक्ति नहीं दी तो विश्वास कम हो जाएगा, है ना। यानी इतनी शक्ति तो दो जो विश्वास बना रहे हैं। यही सात बातें मांगे, और कुछ थोड़ी मांगा। भावार्थ ये कि मालूम है कि स्रोत वही है जहां कनेक्ट करने से बैटरी चार्ज होगी, लेकिन हुई नहीं हुई। क्यों? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे। उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है तब बैटरी चार्ज होगी, और इसी कनेक्शन का नाम ही तो योग है। वैसे ये सात गुण भी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हो, लेकिन आज इसका एक नया एस्पेक्ट देखते हैं कि ये सात गुणों का संबंध हमारे शरीर के साथ क्या है। ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी नर्वस सिस्टम जुड़ी है। कहावत है, नस नस में ज्ञान बहना। प्रैक्टिकली दादी जी को देखते हैं हम, 97 इयर्स की उम्र में भी आज इतने स्वस्थ होकर के चलते हैं। किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, है ना, क्योंकि ज्ञान है। और वही 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग हमारे घर में या हमारे आसपास भी अगर कहीं होते हैं, उनकी हालतें क्या होती है। इसी तरह शांति का संबंध हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। जब व्यक्ति शांति में है तो नॉर्मल चलता है, लेकिन स्ट्रेस में है तो रेस्पिरेशन भी कैसा होता है। इसी तरह प्रेम का संबंध हमारे हार्ट के साथ है। जहां प्यार है, विश्वास है, और वहीं से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहां होगा, सिर में या पेट में, हाँ, छाती में होता है, है ना। इसीलिए तो आज दुनिया में हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर वन पर जा रहे हैं। प्यार का अभाव, और वो भी भारत में नंबर वन पर जा रहे हैं। और इसी तरह सुख का संबंध हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार लेकर आए तो क्या कहते, पहले खा लेने दो, अभी नहीं सुनाना। अगर खाने से पहले ही सुना दिया गया, उसके बाद एक भी चीज खाने की इच्छा होगी, अरुचि हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति जब खाना खाने बैठा होता है और उसी समय कोई कलह क्लेश मचाता है तो क्या कहते हैं, अरे सुख से खाने तो दो, दो रोटी तो खानी है, सुख से खाने दो। यानी सुख की मनस्थिति में अगर खाना खाया होता है तो वो हजम भी होता है, नहीं तो गैस, एसिडिटी, अल्सर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सुख की स्थिति नहीं है। इसीलिए, और आजकल तो खास करके देखा गया कि मोबाइल एक साधन है हमारे लिए, लेकिन मालिक बन के प्रयोग करने के बजाय गुलाम बन गए। अरे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां तो उसका मुंह बंद रखे, लेकिन नहीं। खास करके तीन स्थान ऐसे हैं जहां उसका मुंह बंद रखना बहुत जरूरी है। कहां कहां? सबसे पहले जब नहाने जाओ ना तो शांति से नहाओ, कई लोग बाथरूम में भी ले जाते हैं। अरे बाथरूम में उसकी क्या जरूरत है, शांति से नहा लो, है ना। दूसरा, जब खाना खाने बैठो तब तो उसका मुंह बंद रखो, खाना भी खा रहे हो उसी समय कोई बात हुई, गुस्सा भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, क्या फायदा। सुख की स्थिति में खाना खा लो, उस समय उसका मुंह बंद रखो, उसके बाद भले चालू करो ना। और तीसरा, जब ऐसे आध्यात्मिक स्थानों पर गए हो जहां कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, वहां तो बंद रखो। कई लोग जानबूझ करके वहीं चालू रखते हैं ताकि अगर अच्छा न लगे तो उठ के बाहर तो निकल सकते हैं उसके बहाने। भावार्थ ये कि आज जब उसकी गुलामी आ जाती है तो जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है। इसी तरह पवित्रता का संबंध हमारी पंच इंद्रियों के साथ है। आज ये पंच इंद्रियों के अंदर आसक्ति आ गई है, कहां बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर व्यक्ति को बैठकर कार्य करना पड़ता है या फिर उसके शौक को पूरा करने में कंप्यूटर को यूज किया जाता है, आंखें खराब हो रही है। बहुत ज्यादा मोबाइल कान पर जब रहता है तो कान खराब हो रहे हैं रेडिएशन से। जिह्वा की आसक्ति है तो सिस्टम खराब हो रही है। इसीलिए कहा जाता जहां आसक्ति है वहां से बीमारी भी आ सकती है, है ना। इंप्यूरिटीज, आसक्ति माना ही इंप्यूरिटी। इसीलिए गीता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस पर कहा गया है। इसी तरह शक्ति का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता रहे लेकिन किसी ने समय पर उसको इतना डीमोटिवेट करने वाले शब्द कहे, बातें कही, उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत उसमें नहीं होगी। और समय पर अगर उसको मोटिवेट कर दिया जाए तो असंभव को संभव करने की ताकत उसमें आ जाती है। और इसी तरह आनंद का संबंध हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ है। ये हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उसका कारण ये है, आनंद की कमी, खुशी नहीं जीवन में, इसीलिए हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहां ये सात गुण है वहां ये शरीर भी स्वस्थ होता है। इसीलिए कहते हैं देवताओं की कंचन काया थी, निरोगी काया थी, क्योंकि सातों गुणों से उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। आज मनुष्य की बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए हर रोज कहीं न कहीं प्रॉब्लम बना ही रहता है। कभी हमने कोई कथा में सुना नहीं कि फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था या उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया, सुनते कोई कथा में नहीं। और यही कहा जाता है कि योग द्वारा कंचन काया निरोगी काया, योग माना कोई फिजिकल आसन की बात नहीं है, लेकिन जब ये योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज करते हैं, तो शारीरिक भी स्वस्थ रहने लगते हैं शारीरिक रूप से। इसीलिए ये सातों गुणों से अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी हो गया है, है ना? रिसेंटली हमने सुना है कि दुनिया में ऐसे कैमरास निकले हैं जो व्यक्ति के ओरास, आप लोगों ने भी सुना होगा, और उसको हेल्थ के साथ जोड़ा जा रहा है। एक बहन ने मुझे अपना रिपोर्ट दिखाया कि उसका ओरा स्कैनिंग हुआ, और ओरा स्कैनिंग के बाद कई जगह पर उसके सिस्टम में डार्क ओरास थे, तो उसको कहा गया कि तुम्हारे नेचर के अंदर ईर्ष्या है, वो जो ओरा का कलर था उसको देख करके ईर्ष्या द्वेष जैसे बहुत ज्यादा उसके नेचर में थी। तो उसको डॉक्टर ने यही एडवाइस किया कि जब तक तुम अपना नेचर बदलेंगी नहीं, तब तक तुम्हारी ये सिस्टम, हम कितनी भी तरीके से मेडिकेशन दे दे, ये ठीक होने वाली नहीं है। फिर वो यहां पर आई और खास उसने परमिशन लिया कि मुझे एक महीना रहना है यहां पर और मेडिटेशन करना है। एक महीना लगातार उसने अपने नेचर पर काम किया और अपने नेचर के अंदर ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से, समझ से ये परिवर्तन लाया कि ईर्ष्या करके मुझे क्या मिलेगा, द्वेष रख करके मुझे क्या मिलेगा। और उस समझ को अप्लाई करने के बाद एक महीने में उसने अपने नेचर में काफी परिवर्तन लाया। एक महीने के बाद फिर यहां से जाने के बाद ओरा स्कैनिंग कराया तो उसके जो डार्क ओरास थे वो कंप्लीट परिवर्तन हो गए। डॉक्टर को आश्चर्य लगा कि एक महीने में तुमने क्या किया जो अपने नेचर को चेंज किया, यानी जिसको कहा जाए तो रियल नेचर क्योर किया उसने, अपना परिवर्तन किया, तो उसकी वो बीमारी ठीक हो गई। भावार्थ ये कि आजकल ये जो नई टेक्निक है कि जब तक व्यक्ति अपने नेचर को सुधारता नहीं है तब तक वो बीमारी से मुक्त नहीं हो सकता है। तो बिना मेडिकेशन जो बीमारी से मुक्त होने की बात है वो नेचर परिवर्तन करने के आधार पर है। आप सुनेंगे भी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को रिवर्स करने का जो सारा प्रोजेक्ट है, डायबिटीज किस तरह से रिवर्स करने का सारा प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो कितना सफल होता जा रहा है, क्योंकि नेचर को कैसे चेंज करना चाहिए वो सारी टेक्निक बताई जाती है। और उस टेक्निक से जब परिवर्तन ले आते तो जरूर व्यक्ति के सिस्टम में भी चेंज आने लगता है। इसलिए कहा कि ये सात गुणों का कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा है। लेकिन फिर ये मेडिटेशन कैसे करें, बैटरी चार्ज कैसे करें? तो जिस तरह शरीर को जो पांच तत्व चाहिए उसके लिए शरीर के पास इनबिल्ट सिस्टम है जो उसकी पूर्ति करता है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी, ठीक इसी तरह आत्मा को जो सातों गुणों से बैटरी चार्ज करनी है उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। और वो क्या है? तो तीन शक्तियां हैं जो आत्मा के साथ आती है और उसी के साथ चली जाती है। और वो तीन सूक्ष्म शक्ति है मन, जो हमारी सोचने की शक्ति का दूसरा नाम है। दूसरा है बुद्धि, जो समझने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति का दूसरा नाम है। और तीसरा है संस्कार, जो हमारे कर्मों का प्रभाव है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मन, जिसको कई उपमाएं दी गई, किसी ने कहा तूफानी घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है जो भागता रहता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं, मन बहुत सुंदर चीज है। गीता में भी इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यही एडवाइस दी, मन को मित्र बना लो। मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र है, इसलिए मन को तू मित्र बना ले। मन को मित्र बनाने की कला, यही तो योग है। मन जो सोचता है, असंख्य विचार सारे दिन के अंदर आ जाते हैं, अगर उसको क्लासिफाई किया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर चार प्रकार के विचार आते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, जो कोई ना कोई बुराइयों को लेकर के है, कमजोरियों को लेकर के है, विकृतियों को लेकर के है, हीनता की भावना को लेकर के है, स्वार्थ को लेकर के है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार, जो डे टू डे रूटीन वर्क से कनेक्टेड है। और चौथे प्रकार के विचार है फालतू विचार, व्यर्थ विचार, कि जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को चबाने लगता है। ऐसा कहते थे तो अच्छा होता था, ये करते थे तो अच्छा होता था, बीती हुई घटनाओं को याद करना जिसमें कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको वेस्ट थॉट्स कहा। हाँ, बीती हुई बातों से सीख ले ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही चबाते रहने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये चार प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाता है। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें तो सारे दिन में अधिकतर विचार कौन से होते हैं आउट ऑफ द फोर? वेस्ट दूसरे नंबर पर, नेगेटिव, क्योंकि आवश्यक विचार में भी स्वार्थ ज्यादा होता है, इसलिए वो भी नेगेटिव बन जाता है। बिना स्वार्थ के कोई आवश्यक कार्य भी नहीं करेगा। पॉजिटिव विचार ना के बराबर है ना। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर मेरे विचारों की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट अधिक है आज के युग के अंदर, तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या उस जीवन के अंदर हम सुख शांति से अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे? अगर मुझे अपनी बैटरी को सुख शांति आनंद प्रेम से चार्ज करनी हो तो उसके लिए विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन करना आवश्यक है। नेगेटिव और वेस्ट से उसको पॉजिटिव की ओर ले जाना होगा। हाँ, आज की दुनिया के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। इतने पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज चलने लगे हैं, वहां तक के छोटे बच्चे भी जब मां बाप को स्ट्रेस देखते हैं तो क्या कहते हैं, बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो आप, वो भी एडवाइस देने लगता है। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग करना है या करना चाहिए, ये सिर्फ दूसरों को एडवाइस देने तक। कि कोई नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते, क्यों नेगेटिव सोच रहे, पॉजिटिव सोचो ना। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी कोई बात परिस्थिति आ जाती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो व्यक्ति हमें याद दिलाता है कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे। वी नेवर रियली एक्सेप्ट कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं, हम यही कहते हैं मेरी बात अलग है और तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तू नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना, मैं तो वास्तविक सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो वी नेवर रियली एडमिट कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचना हमें भी नहीं आता है। आज की दुनिया में ये नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल क्यों हो गया, इतना नेचुरल पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं है। कुछ भी हुआ, घर में बच्चा थोड़ा लेट आया तो पहला विचार कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल क्यों हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग इतना नेचुरल क्यों नहीं है, क्या कहेंगे। बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए, क्योंकि सच पूछो तो सुबह जब व्यक्ति उठता है, हम अपनी दिनचर्या को देख ले कि सुबह जब व्यक्ति उठता है और सबसे पहला यही उसका प्रश्न होता है, न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया, चाय के साथ न्यूज़पेपर चाहिए, और अंदर के पेजेस में पॉजिटिव कॉलम्स अच्छी आती है लेकिन क्या पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट पेज। और फर्स्ट पेज में क्या होता है, पॉजिटिव न्यूज होती है, नेगेटिव न्यूज होती है, नेगेटिव, और उसी से दिन हमारा शुरू होता है ना। अच्छा, उसके बाद लोग ऑफिस में जाते हैं, वहां एक दूसरे से अगर बातचीत करनी पड़ती है या बातचीत करते हैं तो क्या टॉपिक रहता है, किसी के पास कोई अच्छी बात है शेयर करने के लिए, आज की दुनिया में अच्छी बात है, आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बता दिया, बस यही तो बातें हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड होती है। शाम को घर आओ, टेलीविजन शुरू करो, क्या मिलेगा, किसी ने हमको बताया कि टेलीविजन पर आजकल जो सीरियल्स आती है, सीरियल में घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे रखनी चाहिए, कैसे बदला लेना चाहिए, यही बातें होती है। कोई पॉजिटिव बात हो ऐसा तो होता ही नहीं है। न्यूज देखो तो भी सारी हेडलाइंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सुबह से लेकर रात तक जो इनपुट गया, पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया, नेगेटिव है ना। तो जब इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या रहेगा। इसलिए आजकल बच्चों में भी इतना रिएक्टिव नेचर हो गया है, क्योंकि उनके अंदर भी नेगेटिव इनपुट्स ज्यादा है। तो जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस, वैसा आउटपुट, और इसलिए फिर उनकी हरकतों को देख करके आपको भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। और जितना गुस्सा करेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतनी बैटरी तो डिस्चार्ज होगी ही। इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट ही नहीं है। अब यहां आप 3 दिन आए हैं, न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, कोई कमरों में न्यूज़पेपर नहीं होगा है, टीवी भी नहीं है, और सारा दिन जो इनपुट मिलेगा सुबह से रात तक वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तीन दिन में आप अपने अंदर एक फर्क देखेंगे कि न्यूज न मिलने से आप कितने खुश रहते हैं वो देखो। मिस करेंगे क्या आप, ये भी महसूस करना मिस किया या नहीं किया। और इसीलिए आप लोगों को ये भी बताया होगा कि भाई घर में इन्फॉर्म करना है, भाई आराम से हम पहुंच गए, ताकि वो भी चिंता न करे, इन्फॉर्म कर दो। फिर तीन दिन उसको भी ज्यादा हाथ नहीं लगाना है ना, मोबाइल को भी। और देखो जितना आपको ये पॉजिटिव इनपुट्स मिलेगी आपके अंदर इतनी खुशी महसूस होगी कि तीसरे दिन तक तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कंप्लीट चेंज्ड पर्सनालिटी हो गए। तो इसीलिए कहा जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना है, जैसा सोचते हैं वैसी भावनाएं होती है, वैसा ही हमारा कर्म व्यवहार होता है। विचार इतनी महान शक्ति है कि जो व्यक्ति जीवन में अनुभव करना चाहे, आज इंसान को डर का अनुभव क्यों होता है, छोटी छोटी बात में डर लगता है, क्यों? क्योंकि विचारों की क्वालिटी वैसी है, इसीलिए डर तनाव या अनुभव होता है। कोई भी विचार को बार बार सोचते रहने से, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट्स योर बिलीफ्स, मान्यता बनाते हैं, वैसी मनोवृत्ति बन जाती है और फिर वो मान्यता सही होती है। इसीलिए कहा विचार एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोएंगे और जितना उसमें अपनी पावर को इन्वेस्ट करेंगे उतना ड्रेन होते जाएंगे। तब कहा पॉजिटिव विचार बैटरी को चार्ज करता है, नेगेटिव विचार बैटरी को डिस्चार्ज करता है। अब आज समझा तो मैंने ये नहीं कि कल से पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा धैर्यता रखनी पड़ती है, कॉन्शियसली अपने आप को चेंज करना होता है, विचारों को चेंज करना पड़ता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। वो सारे विचार फिर बुद्धि के पास आते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि है आत्मा के अंतर चक्षु, जैसे ये आंखों से जो कुछ भी देखते हैं स्पष्ट समझ में आता है। कुछ चीजें ऐसी है जो अंतर चक्षु से देख करके समझ में आता है। इंसान का जब जन्म होता है संसार में तो उसको भगवान से दो गिफ्ट मिलती है और वो गिफ्ट दोनों बुद्धि को मिलती है। कौन सी गिफ्ट मिलती है बुद्धि को? सबसे पहली गिफ्ट मिलती है विवेक, विजडम, और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम ऑफ चॉइस। विवेक अच्छी तरह समझ सकता क्या सही है क्या गलत है। आज एक छोटे बच्चे के सामने भी आप झूठ बोल करके देखो, वो बच्चा क्या कहेगा? तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना। लेकिन उस वक्त हम क्या कहते? चुप बैठ, समझता नहीं, बीच में बोलने की आदत पड़ गई है ना। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, जैसे हमने चुप तो करा दिया वो चुप हो गया, लेकिन अंदर में वो सोचता है कि मेरा विवेक तो कहता है ये गलत है और ये कहता है मैं समझता नहीं हूं। वो अंदर ही अंदर एक अंतर द्वंद में चल रहा है, इसलिए दूसरी बार कोई सिचुएशन आती है वो झूठ बोलता है। अब उसने झूठ बोला तो भी उसको डांट पड़ी, झूठ बोलता है। अब वो और कंफ्यूज होता है, जब मैंने सही बोला तो क्या तू समझता नहीं है, अब मैं जब झूठ बोलता हूं उनके हिसाब से तो कहते झूठ बोलता है, अब करना क्या चाहिए? उसमें जैसी प्रकृति होती है या जिस तरह का माहौल होता है उस तरफ वो मुड़ जाता है, अगर सात्विक माहौल में पलता है तो वैल्यूज के तरफ मुड़ता है, अगर तामसिक माहौल में पल रहा है तो उस प्रकार के संस्कार को एडॉप्ट कर लेता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस ये उसके पास है, इसलिए हमारे कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ बिकॉज इट इज आवर चॉइस। चॉइस हमारा है क्योंकि बुद्धि ने जिस तरह का चॉइस किया है उस अनुसार उसकी अनुभूतियां हैं। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा था, चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन, चुनौतियां हर एक के लिए हैं, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौतियां, यही चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोल देती है, और किसी किसी के लिए यही चैलेंजेस पछाड़ने वाला अनुभव कराती है, बहुत बड़ी सेटबैक देता है। अब किसके लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलते हैं, किसको ये सेटबैक देता है, क्या कहेंगे? चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। किसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं, किसको पछाड़ने वाला अनुभव होता है? इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट इज मेड। चुनौती के वक्त अगर गलत डिसीशन या गलत चॉइस कर लिया उसको पछाड़ने वाला अनुभव होता है, और चुनौती के वक्त अगर सही चॉइस किया, सही डिसीशन ले लिया, उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। चैलेंजेस आर देयर फॉर एवरीवन। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस वी मेक। जिस तरह का चॉइस लेंगे हम, डिसीशन लेंगे, क्योंकि वो अंतर चक्षु पहले तो हर बात को देखती है, समझती है, तर्क चलाती है, विश्लेषण करती है, परखती है, और उसके बाद निर्णय देती है। और जहां सही निर्णय होगा, आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब जब लाइफ में आपने सही निर्णय, सही चॉइस लिया है, तब तब आपको एक सुकून का अनुभव हुआ है। और जीवन में जब जब आपने गलत चॉइस किया है, तब तब परेशानियों को उठाना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए बुद्धि जब राइट चॉइस करती है तो बैटरी चार्ज होती है, जब रॉन्ग चॉइस करती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। और तीसरा है संस्कार, जो हमारे कर्मों का प्रभाव है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मेमोरी में जाकर समा जाता है, चाहे कोई स्किल्स टैलेंट्स के रूप में। मनुष्य के अंदर संस्कार भी कितने प्रकार के, क्योंकि एक व्यक्ति न मिले भी दूसरे से, जैसा संस्कार वैसा स्वभाव नेचर, और जैसा नेचर वैसे फीचर्स। इसलिए आप दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन एक का फीचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का नेचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का संस्कार न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का कर्म न मिले दूसरे से, क्योंकि उस कर्म करने के लिए एक का चॉइस न मिले दूसरे से। इसीलिए हर व्यक्ति भिन्न है। तो कितने प्रकार के संस्कार है? 5 प्रकार के संस्कार है हर व्यक्ति के अंदर। सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार, अनादि, जो 7 गुणों से बैटरी फुल चार्ज वाले संस्कार। जब ईश्वर के धाम से संसार में आते हैं उस समय हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। लेकिन उसके बाद दूसरे प्रकार के संस्कार, जो पूर्व जन्म के संस्कार, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, तो उस जन्म के संस्कार को भी साथ ले आता है। تین سال کا بچہ کمپیوٹر چلانے لگتا ہے، پانچ سال کا بچہ گاڑی چلانے لگتا ہے، شاستر کے شلوک بولنے لگ جاتا ہے۔ تو کہتے پورو جنم کے سنسکاروں کا ادے ہوا، اب اسی میں ادے ہوا، باقی سب میں نہیں۔ ادے ہر ایک میں ہوتا ہے، انٹینسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ کسی میں لو انٹینسٹی ہوتی ہے تو دکھائی نہیں پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کسی میں بہت تیور انٹینسٹی سے باہر آ جاتا ہے تو ایکسپشنل کیسز میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پورو جنم کے سنسکار کریانوت ہر ایک میں ہے، پرسنٹیج میں فرق ہے۔ تیسرے پرکار کے سنسکار ہے خاندانی سنسکار، مات پتا باپ دادا کا سنسکار۔ کوئی بچہ ماں جیسا ہے، پتا جیسا ہے، کوئی دادا جیسا ہے، خاندانی سنسکار۔ ایک بار ایک بچہ تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا، کئی بار میں نے دیکھا اس کو جھوٹ بولتے ہوئے۔ ایک بار میں نے اس کو بلا کر پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جھوٹ بولنے سے تمہیں کیا ملا؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ایسے ہی بول دیتا۔ میں نے اس کو سمجھانے کا پریتن کیا کہ جھوٹ بول کر کے تم اپنی پرسنالٹی کیسی کریٹ کر رہے ہو، بعد میں تم جب سچ بولیں گا نا کوئی وشواس نہیں کرے گا۔ کچھ ادھارن دیے، کس سے سنائے، سمجھدار تھا، میری بات سمجھ رہا تھا۔ آدھا پونا گھنٹہ سمجھایا کہ اس کے بعد مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے آگے سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا پرومس کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو، کہتا ہے پرومس کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک بزرگ بھائی ہماری باتیں سن رہے تھے، جیسے ہی بچے نے کہا پرومس کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کو ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا آپ کیوں ہنسے؟ کہا دیدی یہ پرومس جو کیا نا یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں نے کہا کیسے کہہ سکتے، اس نے سمجھ کے پرومس کیا ہے۔ کہا اس کا دوش نہیں، اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے، اس کے دادا کو بھی دیکھا ہے میں نے، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ خاندانی سنسکار ہے، آپ کے آدھا گھنٹہ سمجھانے سے ان کا خون بدلی نہیں ہو جاتا ہے، یہ خون کے سنسکار ہے۔ اور اسی لیے جب تک یہ جھوٹ نہیں بولتے ان کی روٹی ہجم نہیں ہوتی ہے، یہ خاندانی سنسکار ہے۔ چوتھے پرکار کے سنسکار جو اس جنم میں ہم نئے کریٹ کرتے ہیں سنگ کے پربھاؤ میں آ کر کے، جیسا سنگ ویسا رنگ، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ اور پانچویں پرکار کے سنسکار ہے دڑھتا کے سنسکار، ول پاور کے سنسکار۔ ایک بار ویکتی اندر ٹھان لیتا ہے بس یہی کرنا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی چینج نہیں کر پاتا ہے۔ اسی دڑھتا سے، ول پاور سے کوئی مہانتا کے شکھر پر پہنچ جاتے ہیں اور کوئی برے کاریے میں نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ پانچ پرکار کے سنسکار ہر ایک میں ہونے کارن ہر ویکتی بھن ہے، ایک نہ ملے دوسرے سے، کیونکہ کس میں کون سا پرسنٹیج، کس میں کون سا پرسنٹیج ادھک چل رہا ہے۔ جو انادی سنسکار ہے، اوریجنل پیور، ساتوں گنوں سے بھرپور، لیکن دھیرے دھیرے ویکتی جیسے بڑا ہوتا ہے اپنی واستوکتا سے دور چلا جاتا ہے، سات اوگن جیون میں آ گئے، اور اسی لیے نیگیٹیوٹی پرسنالٹی میں بڑھتی گئی۔ میڈیٹیشن مانا اٹس اے جرنی بیک ٹو دا ریئل سیلف، اپنی واستوکتا کے طرف آنے کی ایک یاترا ہے، اس کا یہ پہلا قدم ہے آتم چنتن۔ وہی سات گنوں سے ویکتی جیون میں مہانتا کے شکھر پر پہنچ جاتا ہے اگر صحیح روپ میں اس کو چینلائز کیا گیا تو۔ اسی لیے بتایا، کئی لوگ پوچھتے کیا ہم اپنے ویکتتو کو بدل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، انسان کا ویکتتو ایک برف کی شیلا جیسا ہے، اٹس لائک این آئس برگ۔ 10% از ویزیبل 90% از انویزیبل. وہ خود بھی کئی بار نہیں جانتا ہے میرا سنسکار کیا ہے، میرا ویکتتو کیا ہے. آتما بیچ میں ہے جس میں اتھا شکتی اتھا کشمتا ہے، لیکن آج اس آتما کی شکتی کو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ چار انڈر کرنٹس. سب سے پہلا برائیوں کے سنسکار، دوسرا پورو جنم کے سنسکار، تیسرا خاندانی سنسکار، اور چوتھا سنگ کے رنگ کے سنسکار. یہ ڈرائیونگ فورس بن گئے ہیں، انڈر کرنٹس کے روپ میں اس کے ویکتتو کو ڈرائیو کر رہے ہیں. آتما میں اتھا کشمتا ہونے کے بعد بھی وہ ایک دم کلوزڈ پرسنالٹی ہو گئے ہیں. اب یہ چاروں کو اگر نشکریہ کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے؟ تو جیسے کہا جاتا ہے لوہے سے لوہا کٹتا ہے، ڈائمنڈ سے ڈائمنڈ کٹتا ہے، اسی طرح سنسکار سے سنسکار کو کاٹا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے پانچویں پرکار کے سنسکار کو جاگرت کرنا ہوگا، درڑتا کے سنسکار. اور جب درڑتا کے سنسکار کو جاگرت کر کے اس کو آتما پر فوکس کرتے ہیں، اس کی شکتی کو کشمتا کو باہر لے آتے ہیں، تب وہ چاروں پرکار کے سنسکار نشکریہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اسپرچولیٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہی اس درڑتا کی شکتی سے جو اندر کی شکتی کو باہر لے آئے اس کو ڈائریکشن دیتی ہے، دشا دیتی ہے. اسپرچولیٹی سے دشا ملتی ہے تو ویکتی مہانتا کے شکھر پر پہنچتے ہیں، نہیں تو درڑتا کی شکتی سے اندر کی شکتی باہر آ جائے لیکن اس کو چینلائز نہ کیا جائے تو نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے، تو وہی ویکتی ہٹلر یا کوئی ٹیررسٹ بھی بن جاتا ہے. شکتی ان میں بھی ہے لیکن رانگ چینلائزڈ، ڈائریکشن نہیں دیا گیا اسی لیے. تو اس طرح سے اپنے کمپلیٹ ویکتتو کو ہم پریورتن کر سکتے ہیں. وہ آتما اس شریر کے اندر کہاں نواس کرتی ہے یہ تو میڈیکل سائنس دوارا پرمانت ہے کہ ہائپوتھیلمس اور پیٹیوٹری گلینڈ کے بیچ میں رہتی ہے. لیکن اوریجنل آتما کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے سرفیس مارکنگ یہاں دکھایا گیا ہے، بروکوٹی کی مدھیہ میں یہاں تلک لگایا جاتا ہے. بھارت میں ایک پرتھا ہے، مندر جائیں گے نا چمڑے کی چیز کو باہر اتاریں گے، پھر اندر جا کے تلک لگاتے ہیں، پھر بھگوان کی مورتی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے نمن کرتے ہیں. یہ پرتھا چلتی آئی لیکن اس کے بھاو کو کبھی سمجھا نہیں کہ چمڑے کی چیز کو باہر کیوں اتارا. وہ چمڑا تو اتار دیا لیکن یہ چمڑا، یہ بھی تو چمڑا ہے نا. جس کا کانشیسنس ویکتی کو اتنا ادھک ہے اور کبھی کبھی ایگو کانشیسنس میں آ جاتے ہیں، وہ چمڑا لے کر کے اندر جا رہے ہیں. فرسٹ آف آل چمڑا باہر اتارنا مانا اس ایگو کانشیسنس کو باہر اتارو، پھر اندر جا کے تلک لگایا مانا کنسیڈر یور سیلف ایز اے سول اور بی سول کانشیسنس، اس کانشیسنس میں اپنے آپ کو لے آؤ. اس کے بعد بھگوان کے سامنے جا کر کے جب اپنی پرارتھنا رکھتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو کنیکٹ یور سیلف ود دا سپریم. جب تک سول کانشیس نہیں تب تک سپریم کے ساتھ کنیکشن بھی نہیں. اوریجنلی وہ آتما کہاں سے آتی ہے؟ جو کہتے جہاں سے آئے وہاں جانا ہے، تین لوک ہے، نیچے ایک ساکاری منشیہ لوک جہاں یہ پانچ تتوں کی دنیا ہے، اس کے اوپر ایک اور لوک ہے جس کو کہا جاتا دیویہ لوک، پرم دھام. سائنس نے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز اے سپر لیومینس ورلڈ، جہاں ایک ڈیوائن لائٹ ہے. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرینسز جس کو ہوا ہے، دے آلویز سے وی ٹریول تھرو اے ڈارک ٹنل، اس کے بعد ایک لائٹ کی دنیا میں گئے جہاں اتنی لائٹ تھی، اینڈ وی میٹ وتھ اے لائٹ، ایک لائٹ سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک ڈیوائن لائٹ. اس لیے سائنس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے سپر لیومینس ورلڈ، جہاں ڈیوائن لائٹ پھیلی ہوئی ہے، جہاں سپریم بھی ہے اور جہاں سبھی آتمائیں بھی اپنے اوریجنل روپ میں، اپنی اوریجنل آئیڈینٹیٹی میں وہاں نواس کرتے ہیں. اسی لیے کئی بار کئی لوگوں کو الگ الگ دھرم میں دیکھا جائے تو الگ الگ نام دیے گئے اس دنیا کو. کسی نے اس کو پرم دھام کہا، کسی نے اس کو شانتی دھام کہا، انت شانتی ہے، کسی نے موکش دھام کہا، کسی نے مکتی دھام کہا، کسی نے نروان کہا، کسی نے سچ کھنڈ کہا، کسی نے روحانی دنیا کہا، کسی نے ہائیسٹ ہیونلی ابورڈ کہا، کسی نے ساتواں آسمان کہا، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں اپنا پیارا گھر. کیوں؟ کیونکہ گھر ایسا ستھان ہے جہاں ویکتی کا وشیش لگاؤ ہوتا ہے. ساری دنیا گھوم کے آئیں گے لیکن جب اپنے گھر آئیں گے تو شانتی. اس لیے کہتے ہوم سویٹ ہوم، ہے نا، اپنا گھر داتا کا در، یا فری، اپنے گھر میں جو فریڈم ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. اسی لیے تو کبھی کبھی بیچ بیچ میں آتماؤں کو بھی اپنا گھر یاد آتا ہے، اور جب گھر یاد آتا ہے تو بھگوان سے پرارتھنا میں یہی کہتے ہیں، پربھو اب تو موکش مل جائے تو اچھا ہے، موکش کی کامنا کرتے. لیکن اس میں بھی تین پرکار کے لوگ ہیں. پہلے پرکار کے لوگ ہیں جو موکش میں جانا چاہتا ہے، دیکھ لیا یہ دنیا کیا ہے، اب کیا کرنا، موکش میں جانا ہے. دوسرے پرکار کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، تھوڑا بریک چاہیے، جا کر کے ریسٹ کر کے فریش ہو کے پھر نیچے آئے. اور تیسرے پرکار کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیوں جانا چاہیے، دنیا بہت اچھی ہے، چینج یور ایٹیٹیوڈ، دیٹس اٹ. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی موکش والے یہاں، اینی بڈی ہے؟ اچھا، پرماننٹ گھر جانا ہے، آنا ہی نہیں ہے، دنیا دیکھ لیا ہم نے. اوکے، جو بریک چاہتے، جا کر ریسٹ کر کے فریش ہو کے پھر نیچے آئے، اچھا وہ بھی یہ ہے. اور جو جانا ہی نہیں چاہتے، دنیا بہت اچھی ہے کیوں جانا چاہیے، وہ بھی ہے. لیکن یہاں مجھے چار پرکار کے لوگ دکھائی دیے. چوتھے پرکار کے جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے یا پتا نہیں اس کو کہاں جانا ہے، ہاں ایسس کرنا باقی ہے کہ پتا نہیں کہاں جانا ہے ان کو، ہاں ڈیسیشن نہیں لے پائے. سچ پوچھو تو موکش کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. آپ کہیں گے بہن جی ہم چاہتے ہیں نا. ایک ادہرن میں دوں آپ کو کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں 50-60 فلیٹس ہے، اور اس بلڈنگ کے نیچے ایک پلے گراؤنڈ ہے. ویکیشن کا ٹائم ہے، سارے بلڈنگ کے بچے نیچے آ کے کھیلتے ہیں. مان لو کہ آپ بھی ایک فلیٹ میں رہ رہے ہو، آپ کا بھی بچہ ہے، ویکیشن کا ٹائم ہے، وہ کہتا ہے مجھے نیچے جانا ہے کھیلنے کے لیے. آپ اس کو منع کر دو کہ بیٹا اوپر اتنے کمپیوٹر گیمز ہے تیرے پاس، اوپر بیٹھ کے کھیلو، نیچے جا کے کیا کرنا ہے؟ مان جائے گا؟ مان جائے گا نہیں. نیچے ایک لائیولی کھیل ہے، اس سمے اس کو کمپیوٹر گیمز اچھی نہیں لگتی ہے. उसको समझाने का प्रयत्न करो कि बेटा नीचे जो खेल चल रहा है बड़ा रफ खेल है, अगर तुम्हें किसी ने चीट किया, धोखा दिया, धक्का दिया, गिरा दिया, हरा दिया, क्या करेगा तुम? दुख होगा तुम्हें? इससे तो बेटर है तुम यहां बैठ के ये कंप्यूटर गेम्स खेलो, न हारने की न जीतने की बात ही नहीं है, है ना? मान जाएगा? नहीं, जाना है नीचे। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे गए हैं, वो नीचे जाना चाहता है। ठीक है, आपने परमिशन दिया, गया नीचे, सारा दिन खेल खेलने लगा, दोपहर में भोजन के लिए भी बस आया और भागा फिर से। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, चीटिंग बढ़ती गई और किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया, गिरा दिया, चोट लगी, रोने लगा, किसी ने आकर इन्फॉर्म किया आपको कि उसको चोट लगी है, वो रो रहा है, क्या करेंगे? जाएंगे नीचे, जाकर उसको कहेंगे कि चलो बेटे बहुत खेल लिए। लेकिन जब तक सारे लोग खेल रहे हैं वो भी ऊपर नहीं आएगा, इसलिए फिर आपको फाइनली सबको कहना पड़ता है बहुत खेला, कल खेलना। अभी सब अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर जाते तो खुद का बच्चा भी ऊपर आता है, साफ स्वच्छ करके उसको मलम पट्टी लगा दो, सो गया, खाना पीना दिया, सो गया, मेडिसिन दिया आपने, सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब वो खेल शुरू होगा, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे पिता ने भी हमको कहा, बेटे बैठे रहो पर शांति में, नीचे जाके क्या करना है? हमने भी क्या करने जाना है? सारे लोग गए, मैं क्यों ऊपर बैठा रहूं? और देखा कि जो नीचे गए एक भी वापस ऊपर आया नहीं, माना नीचे का खेल जरूर बढ़िया चल रहा है। इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ता गया, एक मिनट, इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ता गया। कहां से आए? जो है वो तो है ही है, चोला बदल बदल कर यही है, और ऊपर से भी जो नीचे आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, है ना? लेकिन सारा दिन खेलते रहे। अब जैसे कलयुग आया, तो कलयुग के अंदर तो चीटिंग तो होनी है, संसार की भी शाम हो गई, शाम हो गई तो चीटिंग तो होगी ही, और इसलिए किसी ने धक्का दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोटें दी, किसी ने दिल की चोटें दी, जब बहुत ज्यादा हो गया तो हमने भी रोना शुरू किया। क्या कहा? अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा, ये रोना नहीं तो क्या है, है ना? अब रोने लगे तो भगवान ने भी जो वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भी आता हूं, और आके क्या कहता है, चलो बेटे बहुत खेल लिया, अब चलो घर चलो, बहुत खेल लिया। इसलिए अभी आप देखते हैं तो होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब जाना है घर सबको होलसेल में। अब कोई रिटेल में मौत नहीं हो रही है, होलसेल में ही हो रही है। उत्तराखंड में कितने लोग ये हो गए। भावार्थ ये कि अब हर तरफ पर देखेंगे आप चारों ओर, तो एक महान परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और इस तरह से जब संसार का परिवर्तन हो रहा है तो सबको घर जाना ही है, रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर जब दूसरा खेल आरंभ होगा तो आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे हा? तो इसलिए तो कहा, आना और जाना ये तो कुदरत का नियम है। हाँ, आने का समय अपना अपना होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उठता जाता है व्यक्ति, जागृत होता जाता, चलो नीचे चलो करके, तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो परम धाम जहां परमात्मा भी निवास करते, उसके सानिध्य में रहने को मिलता है, लेकिन तो भी जैसे जागृत होंगे हम नीचे आएंगे, खेल में इन्वॉल्व होंगे, फिर वापस जाएंगे। तो आना और जाना, लेकिन हाँ, टू मच हो जाता है तो आता है कि अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन परमानेंट मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। आज एक बच्चे को आप पढ़ाओ लिखाओ एजुकेट करो, उसको टैलेंट्स स्किल्स उसके डेवलप किया जाए और उसके बाद उसको कहा जाए कि अभी तुम्हें कोई काम धंधा नहीं करना, हमारे पास इतना पैसा है जो तेरी पीढ़ी की पीढ़ी भी खा सकते हैं, अब तुम घर में बैठो। बैठेगा? जिसमें शक्ति है क्षमता है घर में बैठने के लिए नहीं है। आत्मा में भी इतनी शक्ति है क्षमता है ऊपर बैठने के लिए नहीं है। इसीलिए ये फील्ड क्रिएट किया गया है कि जहां हम अपनी योग्यता को अपनी शक्ति को अपनी क्षमता को यूज करें, है ना। शुरू में तो बहुत अच्छी तरह से यूज किया जब जन्नत थी ये दुनिया, लेकिन आज उसका मिसयूज करने लगे एक्सप्लॉइट करने लगे तो आज यही क्या बन गया है, नरक भी बन गया है, हेल बन गया है ना। इसीलिए परमात्मा आकर के अधर्म का नाश सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो यह था आत्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का पूर्ण परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी के लिए फोटो चाहिए वही है या दूसरा, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस, एड्रेस में भी दो एड्रेस, एक टेम्पररी एक परमानेंट, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, जिसमें पूरा परिचय आ जाता है। आज आत्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है आत्मा, रूह, शक्ति, एनर्जी, सोल, जो भी कहो, उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, एक एनर्जी है, एक डिवाइन लाइट है। उसके क्वालिफिकेशन सात गुण, ज्ञान, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति। और उसका निवास स्थान शरीर के अंदर टेम्पररी, ब्रुकुटी की मध्य में, सरफेस मार्किंग, लेकिन परमानेंट एड्रेस है परम धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, जहां से हम इस संसार में आए हैं और क्यों आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या था, हमारा ऑक्यूपेशन क्या था। तो अपने सातों गुणों के आधार से जीवन जीना, लेकिन क्योंकि सातों गुण खत्म हो गए, अवगुण आ गए, उन अवगुणों के आधार पर जीवन जीने लगे तो इतनी तकलीफों का अनुभव कर रहे हैं जीवन में। तो इसीलिए ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय। अब थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं और मेडिटेशन का जो फर्स्ट स्टेप आत्मचिंतन। हाँ जी, नो नो प्लीज, ये कल का लेसन है हमारा, है ना, कल शाम को, कल सुबह का लेसन है हमारा पूर्व जन्म के ऊपर, कल सुबह का सेशन है, उसमें हम देखेंगे पूर्व जन्म, जन्म और कर्म की कहानी जो है उसको देखेंगे। हाँ जी, मोक्ष के लिए इसीलिए मैंने पूछा, आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन आप रहना चाहिए ऊपर, आप खुद ही रहना नहीं चाहते, नीचे आ जाते तो भगवान भी क्या करेगा, इसलिए कहा। हाँ, आप रहना चाहते हैं तो जरूर मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद जैसे एक व्यक्ति बहुत थका होता है तो कहते बस मुझे सो जाना है, अभी कोई उठाना नहीं मुझे, किसी का भी फोन आए तो भी मुझे नहीं उठाना, मैं इतना थका, आई वॉन्ट टू रेस्ट, सो जाता है, एक मिनट, सो जाता है, कितना घंटा, 10 घंटा 12 घंटा, उसके बाद उठेगा या नहीं उठेगा। और जब वो फ्रेश हो जाता उठता है और फिर भी घर वाले कहे सोए रहो सोए रहो, आपने कहा था सोना है, सोए रहो, आप अभी कोई जरूरत नहीं आपकी उठने की, कहेंगे वो तो तब कहा था जब मैं थका हुआ था, अब तो मैं फ्रेश हो गया ना, अब क्यों सोऊंगा, उसके बाद सोना अच्छा नहीं लगता है। तो जब थक जाते हैं तो मोक्ष अच्छा लगता है, लेकिन जब फ्रेश हो जाते हैं तो फिर नीचे आने की इच्छा होती है। बाकी भगवान तो कहते हैं बैठे रहो मेरे बाजू में, कोई अर्जा नहीं, प्रोवाइडेड यू वॉन्ट टू सिट देयर, आप ही नहीं बैठना चाहेंगे तो भगवान फोर्स भी नहीं करता है। हाँ जी, ये आपका आगे के सेशंस है, उसमें आपको मौका भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगी, सब उसमें आपको डिस्कस भी कर सकेंगे आप उस बात के लिए। अभी हम जो ये आत्म का लेसन था, तो थोड़ी देर के लिए आत्म चिंतन करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है गोइंग बैक टू द रियल आइडेंटिटी। जी थैंक यू वेरी मच। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को विजुअलाइज करते हैं, चैतन्य शक्ति के रूप में ब्रह्मकुटी की मध्य में एक डिवाइन लाइट के रूप में स्वयं को देखो। और धीरे धीरे हम मन को ले चलते हैं अपनी वास्तविकता की ओर, महसूस करें कि अपने मन और बुद्धि से शरीर रूपी वस्त्र को डिटैच करते हुए चलते हैं एक यात्रा पर अनंत की ओर, अपने परम धाम की ओर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार दिव्य लोक में, मोक्ष धाम में, जहां चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, अंतर चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। फील द लाइटनेस, एकदम हल्कापन, मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध पवित्र हूं। मैं वो पवित्रता का ओरा मेरे चारों ओर फैला हुआ है। उस डिवाइन लाइट का ग्लो मेरे चारों ओर रेडियंस के रूप में फैला हुआ है। आई विजुअलाइज माई सेल्फ इन दैट रेडियंस ऑफ प्यूरिटी। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। आई कैन फील द पीस, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। इस शांति में एक बहुत प्लेजेंट फीलिंग है। प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख है। इसी शांति में परम आनंद है। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। मैं शांत हूँ, शुद्ध शक्ति स्वरूप। कुछ क्षण के लिए इसी सतोगुण स्वरूप में इस कॉन्शियसनेस में स्वयं को स्टेबलाइज करती हूं। एंड आई फील सो कंफर्टेबल, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मुझ में सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति का संचार हो रहा है। धीरे धीरे मैं स्वयं को सातों गुणों की ऊर्जा से एम्पावर करती हूं। कितनी सुंदर फीलिंग है ये, धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में ब्रुकुटी के मध्य में स्वयं को स्थित करती हूं। उस ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूं। और दिन में अपने कर्म में, व्यवहार में, संबंध में इस ऊर्जा को प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति शांति।